ओम शांति। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 1969। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि 15वां पॉइंट है। अब तो ज्वाला रूप होना है, आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी है, वह कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है, ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं अब तो ज्वाला रूप होना है, आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। देखिए बाबा कहते हैं ज्वाला रूप बनना है। ज्वाला रूप माना क्या? अपनी स्थिति, अपनी अवस्था ऐसी बने कि विश्व में उसकी रोशनी फैले। अगर आग की ज्वाला बहुत बड़ी है तो उससे क्या निकलती है? रोशनी भी निकलती है और गर्मी भी निकलती है। अगर ठंड है तो गर्मी का भी उपयोग हो जाता है, और अगर अंधियारा है तो रोशनी के रूप में भी वो सेवा करती है। तो यह ज्वाला रूप आपका ही यादगार है। यह कब बनेगा? जब आत्मिक स्थिति में आएंगे। जब तक दिया जला नहीं है आत्मिक स्थिति का, तब तक वह दिया यज्ञ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, हवन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दिए से ही आग लेके हवन जलाते हैं। हवन जब बड़े रूप से जलता है तो बड़ा महायज्ञ कहलाया जाता है, लेकिन शुरुआत होती है दिए से। तो जब तक आत्मिक स्थिति का दिया नहीं जलता, ज्वाला रूप नहीं बन सकता, और जब तक ज्वाला रूप नहीं बनेगा परिवर्तन नहीं होगा। दिए की ज्योति में आप ज्यादा कुछ भस्म नहीं कर सकते, दिया ज्यादा से ज्यादा प्रकाश देगा, थोड़े बहुत अंधियारे को खत्म करेगा, लेकिन वो भस्म नहीं कर सकता किसी चीज को जब तक उसका स्वरूप ना बदले। इसलिए अपने स्वरूप को चेक करो, दिया बने हैं, आत्मिक स्थिति में आए हैं, क्योंकि यज्ञ अगली बात है, पहले आत्मिक स्थिति है। आत्मिक स्थिति में आए हैं, योग बढ़ता जा रहा है, ज्ञान लेते जा रहे हैं, तो ही ज्वाला रूप बनते जाएंगे और परिवर्तन करने के लिए तैयार होते जाएंगे। दूसरों को रोशनी देने के लिए अपने पास रोशनी होनी चाहिए। दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए खुद को रास्ता पता होना चाहिए। ये समझ की बात है। खुद को ही अगर रास्ता पता नहीं है, खुद के पास ही रोशनी नहीं है, तो दूसरों को नहीं दे सकते, रास्ता नहीं दिखा सकते। तो अपने को चेक करो, ज्वाला रूप बनने से पहले दिया कहाँ तक बने हैं, आत्मिक स्थिति कहाँ तक आई है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। फिर कितना भी ज्ञान सुने, जो भी योग कर रहे हैं उसे योग नहीं कह सकते अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, वह भक्ति हो जाती है। आत्मिक स्थिति में ही योग होता है और वह भी राजयोग, नहीं तो बाकी सारे हठ योग है या भक्ति है, उससे प्राप्ति नहीं होगी। आप जो चाहते हो, जो प्राप्ति आप चाहते हो आने वाले दुनिया की और इस दुनिया से दुखों से मुक्ति की, वो कहाँ से मिलेगी? अपनी अवस्था से, राजयोग से। और अपनी अवस्था में आकर जब बाप को याद करेंगे तो यहाँ के दुखों से छूट जाएंगे और आने वाले सुखों के लिए हम लायक बनेंगे, पात्र बनेंगे। यहाँ सभी के जीवन में दुख है, लेकिन दुख को समाप्त करने की एक ही विधि है, आत्मा समझ के बाप को याद करो। अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से दुख समाप्त होगा। इतने साल होने के बावजूद अगर अभी भी आप दुखी हो तो अपने को चेक करना, आपने आत्मा समझ के बाप को कितना याद किया। विधि से नहीं जाएंगे तो सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि कौन सी है? सुखों की है, बाप के याद की है, तो उसके लिए विधि से जाना पड़ेगा। बस बहुत साल चले हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, सुबह की मुरली अटेंड कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, सोने से पहले बाप की याद, लेकिन इन सब में अगर आत्मिक स्थिति ही नहीं है तो राजयोग नहीं हो रहा है, वो हठ योग है। अपने मन को बस आप समझा रहे हो कि हमने अमृत वेला की, पर आपने अमृत वेला करने के लिए आप ही जगह पर नहीं थे, तो आप अमृत वेला कहां से कर सकेंगे? आप ही जगह पर नहीं थे तो आप मुरली कहां से सुनेंगे? आप ही जगह पर नहीं थे तो ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, सोने से पहले वाली याद कहां से होगी? अपने को चेक करो, छोटे बच्चों की तरह नहीं करो। बस मन को समझाने के लिए योग में बैठे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हाँ हमने 1 घंटा योग किया, ये मन को समझाने की बात हुई, पर उससे प्राप्ति क्या हुई? और अगर प्राप्ति चाहते हो तो विधि से जाओ, विधि है तो ही सिद्धि मिलेगी। अपने को चेक करो, विधि से बाप को कितना याद करते हो और भावना से बाप को कितना याद करते हो। भावना से बाबा बाबा कहना और बाप ने जो विधि बताई है, बच्चे आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करना, इस विधि से बाप को याद करना, चेक करो अपने को। भावना से करेंगे तो भावना का भाड़ा मिलेगा, विधि से करेंगे तो दुखों से छूट जाएंगे और आने वाले दुनिया की सिद्धि मिल जाएगी। अपने को चेक करो। तो अभी ज्वाला रूप होना है, अंत का समय आ चुका है, फिर भी बहुत से बच्चे कहते हैं अभी तक हमारा योग नहीं लगता। योग कैसे नहीं लगता? योग मना याद है, बस बाप को याद करो। चेक करो अपने को कि बाप याद आ रहा है या नहीं है, लेकिन वह भी किसको याद आ रहा है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर शरीर को बाप याद आ रहा है तो याद नहीं हुई, नाम मान शान को बाप याद आ रहा है, मर्तबे को बाप याद आ रहा है, पोस्ट पोजीशन को बाप याद आ रहा है, ना कोई लॉयर समझ के, डॉक्टर समझ के, इंजीनियर समझ के, स्टूडेंट समझ के बाप को याद करेंगे तो याद नहीं होगी। टीचर समझ के याद करेंगे, प्रोफेसर समझ के याद करेंगे, कोई बिजनेसमैन, कोई नौकरी वाला समझ के याद करेंगे, या आपके जो लौकिक रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, ये समझ के बाप को याद करेंगे तो याद कहां से होगी और प्राप्ति कुछ नहीं होगी इससे। आत्मा समझ के ही बाप को याद करना है तो ही प्राप्ति होगी, एटलीस्ट उन मोमेंट्स के लिए। अपने को आत्मा समझो 2 मिनट 5 मिनट और बाप को याद करो। भूल जाओ उस समय के लिए कि आप कौन हो, इस दुनिया में आपके रिश्ते नाते क्या हैं, आपकी पोस्ट पोजीशन क्या है, वरना जीवन ऐसी ही बीत जाएगी और हाथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, प्राप्तियां कुछ नहीं हो पाएगी, न दुख जाएगा न सुख मिलेगा। उससे अच्छा फिर भक्ति वाले लोग हैं, वो भक्ति करते हैं देह अभिमान में लेकिन दिल से करते हैं, होम हवन करेंगे दिल से करेंगे। आप न दिल से कर रहे हो न दिमाग से कर रहे हो। दिमाग माना समझ, दिल माना भावना। तो अपने को चेक करो कि बाप की याद होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो किस रूप से होती है। अभी अंत का भी अंत आ चुका है तो ज्वाला रूप होना है। अभी भी अगर आपको मदद की आवश्यकता है तो आप विश्व का परिवर्तन क्या कर सकेंगे, मददगार कैसे बन सकेंगे, क्योंकि अभी भी आप मांग रहे हो मदद। फिर बाप से मांगो या किसी और से मांगो, मांगना मांगना ही है। अभी भी आप सक्षम नहीं बने हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, अभी भी आपको सहारे की आवश्यकता है। अंत का भी अंत आ चुका है और अभी भी अगर आप सहारा मांग रहे हो तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा। तो अपने को शक्तिशाली बनाओ, अपने को चेक करो हर दिन, हर रोज चेक करो कि कल से आज कितना शक्तिशाली बने हैं। कल हमें इस बात की आवश्यकता थी, यहां सहारा लगता था, आज लग रहा है क्या? चेक करें अपने को। अब तो ज्वाला रूप होना है, आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है, ज्वाला रूप का यादगार आपका ही है। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो आपसे लाइट और माइट सारे विश्व में फैलना शुरू हो जाएगी और विश्व परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अपने को चेक करना, अपने को चलाने के लिए जितनी आवश्यक है एटलीस्ट उतनी लाइट और माइट आपसे निकलती है, खुद को चलाने जितनी। अगर निकल रही है तो कहीं तो आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी अगर आपको दूसरों की लाइट और माइट लगती है माना आप कमजोर हो। अपनी लाइट और माइट को चेक करो, फिर यादगार बनेगा। पता है ज्वाला देवी भी है, वह कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है, ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है। शक्तियां कौन है? सभी आत्माएं शक्तियां हैं और शिव एक ही है। फिर वो मेल हो फीमेल हो, तन कोई भी हो, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा शक्ति है और शिव एक ही है। मेल फीमेल कोई भी हो, ये सभी बच्चे शक्तियां है, सभी का यादगार है ज्वाला रूप देवी के रूप में। ऐसे नहीं कि सिर्फ फीमेल तन में है इसलिए उनका यादगार है, आत्मा ही फीमेल है। अगर शिव पुरुष है तो आत्मा स्त्री है, और ये शिव शक्ति का खेल है, यह ड्रामा है। तो सभी का यह यादगार है, ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था ऐसी बनाओ कि यह कलयुगी संसार परिवर्तन हो जाए सतयुगी संसार में, आने वाले संसार में परिवर्तन करना है। यह ज्वाला तैयार करनी है, अपनी अवस्था को चेक करते रहना है। रोज चेक करो कि इस संसार को परिवर्तन करने के लिए मैं लायक हूं, मैं पात्र हूं, अपने को चेक करो। रोज चेक करते रहेंगे तो धीरे धीरे लाइट और माइट पूरे संसार में फैलती जाएगी और संसार परिवर्तन हो जाएगा। रोज चेक करते रहना। अच्छा, विदाई के समय सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। देखिए, जब भी बाबा याद प्यार देते हैं किसको देते हैं? यहां जितने टाइटल हैं उस टाइटल में जो बच्चे बैठते हैं उनको ही वह यादगार मिलता है, याद प्यार मिलता है, उनको ही मिलता है। अभी बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को। अगर आप अव्यक्त स्थिति में नहीं है तो आपके लिए याद प्यार नहीं है। भले बाबा ने दिया, आपको लगा आपको मिला, लेकिन यह गलत फहमी है। बाबा ने साफ कहा है मैं किसको याद प्यार दे रहा हूं। कभी कहता है जो मास्टर सर्वशक्तिवान अवस्था में है, जो परम पवित्र है, जो विश्व कल्याणकारी है, जो मास्टर रचयिता है, अगर आप हो तो ही आपको याद प्यार मिलेगा, और अगर नहीं हो तो कहां से मिले? ये बस आपके मन की समझानी है कि मुझे याद प्यार मिला, मन की समझानी है। आप अपने को फंसा रहे हो मन की समझानी करके कि हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इतने साल से बाप से मिल रहे हैं। आप अपने आप को फंसा रहे हैं झूठी बातों में, झूठे संकल्पों में। सच्चाई को समझो, सच्चाई को जानो और उस पर चलो। चेक करो अपने आप को, साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं जो इशारे आपको मिले हैं उन सारे इशारों को जितना जल्दी हो सके जीवन में लाओ और तीव्र पुरुषार्थ करो। बच्चे बाप की बात नहीं सुनते, भाई बहनों की बातें सुनते हैं। भाई बहनों की बातें सुनना मना, बाप इतने वर्षों से ज्ञान दे रहा है उसको कर्मों में नहीं लाएंगे, लेकिन कोई भाई बहन अभी अभी ज्ञान दे रहे कहेंगे कि वाह क्या ज्ञान दिया, कहां से दिया, कैसे दिया, बाप ही दे रहा है ना। आप जिसके ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर कितनी ताकत है उस अनुसार ही आपके अंदर ताकत आएगी। इसलिए बाप आदि से कहता आ रहा है बस मेरी सुनो, किसी और से ना सुनो। क्योंकि अगर कोई अभिमान से अहंकार से सुना रहा है खुद उसी के अंदर ताकत नहीं है तो आपको ताकत कहां से मिलेगी? भले ज्ञान कितना भी ऊंचा हो लेकिन देने वाले में भी ताकत होनी चाहिए। उसी में ताकत नहीं है तो सुनने वालों में ताकत कहां से आएगी? इसलिए कोशिश करो बाप जो मुरली में सुनाते हैं उसे पूरी रीति धारण करने की कोशिश करो। उसे धारण करने की कोशिश करेंगे तो सहज रीति धारण हो जाएगा, क्योंकि बाप के महावाक्य हैं, ताकत बाप की है। भाई बहनों के ज्ञान को धारण करने की कोशिश करेंगे, शायद ज्ञान बहुत अच्छा लगे भी आपको, धारण भी हो जाए, लेकिन टिकेगा नहीं। जैसे ज्ञान देने वाले की अवस्था होगी, जैसे ज्ञान देने वाले की अवस्था बदलती जाएगी, वैसे आपकी अवस्था बदलती जाएगी। हाँ, अगर कोई भाई बहन है यह कह रही है कि ये ज्ञान बाप दे रहा है, तो जरूर लेना, क्योंकि उस ज्ञान में उनकी कोई अटैचमेंट नहीं। वो जानते हैं कि हम लायक नहीं हैं इस ज्ञान को देने के लिए, इस ज्ञान को देने का अधिकार एक को ही है, तो फिर वह ज्ञान बाप दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा है। तो उस ज्ञान की धारणा भी आसानी से हो जाएगी। जिस ज्ञान की धारणा बहुत आसानी से हो जाती है और जिस ज्ञान से जीवन परिवर्तन हो जाता है, समझ जाना वो ज्ञान बाप ने दिया है। और जहां धारणा नहीं होती, सिर्फ ज्ञान की वाहवाह की जाती है, समझ जाना देने वाली आत्मा अहंकार से दे रही है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं जो सिखा रहा हूं, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, उसे जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, तो जीवन सुखी हो जाएगी। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप का नमस्ते। बाप ने किसको नमस्ते किया? सभी शिव शक्तियों और पांडवों को, मनुष्यों को नहीं किया। समझ की बात है, मनुष्यों को नहीं किया, आत्माओं को भी नहीं किया। आत्माओं का हाईएस्ट फॉर्म है शिव शक्तियां और पांडव। आत्माओं का हायर कॉन्शियसनेस है शिव शक्तियां और पांडव। तो उस हायर कॉन्शियसनेस को बाप ने नमस्ते किया। बाप की हर बात राज है, इसकी समझ होनी चाहिए। कोई मनुष्य रूप में बैठा है तो भी उसे नमस्ते नहीं मिलेगा। याद, प्यार और नमस्ते बाप किसको देता है, चेक करो। कभी किसी मुरली में कहा है, इन मनुष्यों को, इन इंसानों को मेरा याद, प्यार और नमस्ते? चेक करना, नहीं है। क्योंकि वो ज्ञान देने आया है किसको? आत्माओं को। और उन आत्माओं का जो हाईएस्ट फॉर्म है शिव शक्तियां और पांडव, इनके द्वारा वो परिवर्तन करने आया है। जब शिव शक्तियां बनेंगे और पांडव बनेंगे, तभी विश्व परिवर्तन के पात्र बनेंगे और बाप का नमस्ते स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि इक्वालिटी में आ जाएंगे, बाप और आप एक समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, और बाप जो सिखाते हैं उसे जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश करना। अच्छा, ओम शांति।